नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने आज लेह के जेवत्सल में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 75 वर्ष के बाद ये पवित्र अवशेष लद्दाख में वापस आए हैं।
यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को सांस्कार घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
इन पवित्र अवशेषों को उनके स्थायी जगह से पहली बार बाहर लाया गया है। पवित्र अवशेषों की ये प्रदर्शनी 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुद्ध पूर्णिमा पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। आज के दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म और महापरिनिर्वाण हुआ था। आज ही के दिन उन्हें बिहार के बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत ओसीआई कार्ड पंजीकरण अब पूरी तरह डिजिटल होगा। नए नियमों में ई ओसीआई, बायोमेट्रिक आधारित फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन और नाबालिगों के लिए दोहरे पासपोर्ट पर पाबंदी जैसे प्रावधान शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम 2009 में संशोधन किए हैं। इस बदलाव का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और तेज बनाना है। मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी नाबालिग बच्चा भारतीय पासपोर्ट के साथ साथ किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं रख सकता है। अधिसूचना के अनुसार ओसीआई कार्ड पंजीकरण के सभी आवेदन अब आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किए जाएंगे। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
इस वर्ष अप्रैल माह में वस्तु और सेवा कर जीएसटी के कुल संग्रह में 8.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ये संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये बढ़ोतरी पिछले वर्ष के अप्रैल माह की तुलना में अधिक है। पिछले साल कुल जीएसटी राजस्व 2,23,000 करोड़ रुपए से अधिक था। अमेरिका ने भारत को लगभग $14 मिलियन मूल्य की चोरी की गई 657 कलाकृतियां लौटा दी हैं। मैनहट्टन जिला अटॉर्नी एलविन ब्रैग ने इसकी घोषणा की। न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास की महावाणिज्य दूत राजलक्ष्मी कदम की उपस्थिति में एक कार्यक्रम में इन कलाकृतियों को लौटाया गया। तस्करी नेटवर्क की कई जांचों के बाद ये कलाकृतियां बरामद की गईं। गुजरात और महाराष्ट्र आज अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। 66वें स्थापना दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आज शाम गुजरात के सूरत में होगा, जिसमें राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में एक परेड होगी। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा मतगणना केंद्रों पर धांधली के आरोपों को निराधार बताया है। आकाशवाणी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि सभी मतगणना केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त केंद्रीय बल तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित माध्यमों से किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि आयोग चुनाव के बाद होने वाले हिंसा से निपटने के लिए हर संभव उपाय कर रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नाव पलटने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। यह हादसा कल शाम खमारा द्वीप के पास बरगी नदी में हुआ, जब 39 यात्रियों को ले जा रही एक नाव अचानक आए भयंकर तूफान और तेज लहरों की चपेट में आकर डूब गई। 28 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 4 पर्यटक लापता हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये मैच जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।